पंचदशी के कुटस्थ दीप प्रकरण का 52 श्लोक। कर्तृत्वादीन बुद्धिधर्मान् स्फूर्त्याख्यां चात्मरूपता दधद् विभाति पुरत आभासोत्तो भ्रमो भवेत्। कर्तृत्वादीन बुद्धिधर्मान् स्फूर्त्याख्यां चात्मरूपता दधद् विभाति पुरत आभासोत्तो भ्रमो भवेत्। कर्तृत्वादीन बुद्धिधर्मान्, कर्तापना भोक्तापना कर्तृत्व भोक्तृत्व मंत्रित्व गंतृत्व ये सब किसके धर्म है? बुद्धि इंद्रिय मन के। और आगे लिखा स्फूर्त्याख्या चात्मरूपतम, स्फूरणा आत्मा का धर्म, चेतना ज्ञान जिसको आप ज्ञान कहते, चेतना रोशनी ऊर्जा पावर एनर्जी ये सब आत्मा का धर्म। शुद्ध आत्मा नहीं, ये जो प्रातिभासिक जिसको बोलते चिदाभास। दधत विभाति पुरत, दुधाय धारण पोषणियों धातु से यहां पर धारण करना, धारण करता हुआ। विभाति का अर्थ है विविध प्रकारेण भाति प्रकाशति, अनेक प्रकार से भाषित हो रहा। अब देखो मन उपाधि से मनता, बुद्धि उपाधि से बोधा, चित्त उपाधि से चेतयिता, पैर उपाधि से गंता, हाथ उपाधि से आदाता, आंख उपाधि से दृष्टा, कान उपाधि से श्रोता। तो विभाति का अर्थ है विविध प्रकारेण भाति प्रकाशते, वही अनेक प्रकार से प्रकाशित हो रहा, भाषित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। वही जैसे कि एक ही विद्युत है, स्पीकर के माध्यम से ध्वनि प्रसारण, ट्यूबलाइट के माध्यम से रोशनी प्रकाश, पंखे के माध्यम से हवा, है तो एक ही पावर, पर अनेक यंत्रों का नाम अलग है, आकार प्रकार अलग है, क्रिया अलग है। तो नाम रूप क्रिया आकार प्रकार यंत्रों के अलग अलग होने पर भी विद्युत एनर्जी ऊर्जा एक ही है। यंत्रों के माध्यम से विविध कार्य दिखलाई पड़ते हैं, ऐसे यहां पर एक ही चैतन्य है। इन यंत्रों के माध्यम से दृष्टा कर्ता भोक्ता मन्ता बोद्धा दाता अदाता ये सब उसकी संज्ञाएं पड़ गई। वही बोले विभाति पूरता मतलब सामने बिल्कुल, आभासो अतो भ्रम भवेत, आभास का भ्रम हो रहा है। तो मुखारबिंद का आभास आपने श्रवण किया होगा उपनिषद में, एकदा बहुधा चैव दिशते जल चंद्रवत, है ना, अत्यवच आभास, अत्यवच आभास जो ब्रह्म सूत्र है उसके व्याख्या में आचार्य ने उद्धरण दिया, एकदा बहुधा चैव दिशते जल चंद्रवत। तो जो आकाश में चंद्रमा है वैसा ही हजारों लाखों घटस्थ जल में उसकी प्रतीति हो रही अनेक प्रकार से, वैसे यहां बता रहे वो आभास है और भ्रम है। अब देखिए ये इसके ऊपर का, ननु चिदाभासस्य सुक्तिका रहता दिवत अधिष्ठान आरोप्य उभय धर्म वत्व अनुपलम्भात कथम आरोपितत्वम् इत्याशंक्याः। पूर्व पक्ष ने शंका किया कि जो आपका यह चिदाभास है उस एक ही चिदाभास में शुक्तिका और रजत मतलब सीपी और चांदी ये समान अधिष्ठान और आरोप्य दोनों धर्म कैसे बन सकते हैं, अधिष्ठान भी और अध्यस्त भी दोनों, तो कहते भ्रांति से बन जाएगा। सामने तो एक ही चीज है पर एकस्मिन धर्मणी उभय अवगाही ज्ञान का नामी तो भ्रांति है ना, एक ही धर्मी है, धर्मी दो नहीं है, एकस्मिन धर्मणी धर्मी एक है सीपी शुक्तिका, धर्मी एक है चीज एक है पर उभय अवगाहन हो रहा। सामान्य अंश का ज्ञान विशेष अंश के अज्ञान से भ्रांति होती है, सामान्य अंश का अज्ञान ज्ञान विशेष अंश का अज्ञान ये भ्रांति का जड़ है। चाहे कोई भी भ्रांति किसी को दुनिया में है, ये चित्सुखी में बहुत विस्तार से स्पष्ट किया है कि त्वदुक्त अर्थम न जानामि, इस प्रकरण से वहां प्रारंभ करके समझाया चित्सुखी में चित्सुकाचार्य ने कि सामान्य अंश का ज्ञान विशेष का ज्ञान से भ्रांति होती है। जैसे घटा लो, अब जो रस्सी है रस्सी के टेढ़े मेढ़े अंश का ज्ञान है आपको, है ना, रस्सी भी टेढ़ी मेढ़ी होती और सांप भी टेढ़ा मेढ़ा होता। सांप कभी सीधा चलता है देखा किसी ने? नहीं चलता, जब भी चलता है वैसे ही से करके टेढ़ा चलता वक्र। तो देखो अब ये जो रस्सी है वो रस्सी का सामान्य अंश मतलब कि जो टेढ़ा मेढ़ा वक्रत्व उसका ज्ञान है। जब आप कहते ना अयम सर्प, देखो अयम सर्प में दो चीज है, एक अयम है एक सर्प है, दो शब्द है ना, अयम और सर्प। आप क्या बोलते भ्रांति होने के बाद? अयम सर्प ही सांप है, हिंदी में कहो ये सांप है, सांप नहीं बोलते ये सांप है बोलते अयम सर्प। तो अयम शब्द से सामान्य अंश का ज्ञान हुआ। अयम शब्द का प्रयोग होता है इदमावच्छिन्न वस्तु के लिए, पूर्ववर्ती वस्तु के लिए जो सामने, तो अयम शब्द से उस रस्सी के टेढ़े मेढ़े पने का सामान्य का ज्ञान है पर विशेष का ज्ञान नहीं। देखो रस्सी का रस्सीत्व ज्ञान नहीं है, समझे ना, जो वहां रज्जु पड़ा है रज्जु का रज्जुत्व ज्ञान नहीं है बल्कि सामान्य टेढ़ा मेढ़ा पने का ज्ञान, वो ज्ञान न हो तो भ्रांति नहीं होगी। तो सामान्य अंश का इदम सबसे ज्ञान हुआ यह, अब बोलते ना यह सांप है, यह में दो चीज यह और सांप, तो इदम शब्द से अयम शब्द से सामान्य अंश का ज्ञान हुआ और विशेष मतलब की रज्जुत्व रज्जु का ज्ञान नहीं है। रज्जुत्व प्रकारिका यह रज्जु है ऐसा ज्ञान नहीं है। तो सामान्य अंश का ज्ञान हुआ अयम शब्द से और विशेष रूप से रज्जुत्व रज्जु का ज्ञान नहीं, तब जाके भ्रांति होगी अयम सर्प। और जब विशेष का ज्ञान होगा तो भ्रांति की निवृत्ति, दृष्टांत को हजम कर लेंगे ना तो बस जीवन सफल, दृष्टांत में तो मिनट में आ जाएगा दृष्टांत को हजम करना। तो अब यहां पर रज्जु का सामान्य ज्ञान है, कैसे अयमत्वेन है, रज्जुत्वेन नहीं है, मतलब यह है इतना ज्ञान है। ऐसे ही हम लोगों को यहां पर क्या होता है, ब्रह्म का सामान्य तो ज्ञान हो गया शास्त्रों के सुनने से, बार बार पुस्तक पढ़ने से, परंतु सत्वेन चित्वेन आनंदत्वेन उसका बोध नहीं, विशेष रूप से बोध नहीं हुआ, आत्मत्वेन बोध नहीं हुआ। अब जब यहां पर लाइट जलाते रोशनी जलाते हैं तो रोशनी जलाते ही रज्जु त्विर रज्जु का बोध होता है, विशेष ज्ञान हो गया। तो विशेष जो बोध है वह भ्रांति का निवर्तक है, भ्रम को हटाने वाला है। भ्रांति के लक्षण बहुत किया आचार्यों ने, पर अपने लिए छोटा हिस्सा ही समझो। अतस्मिन तद्बुद्धि का नाम है भ्रांति, सीधी बात है। अतस्मिन तद्बुद्धि, हाँ, तद रूप से बोध नहीं है। है भी तो शास्त्रत्व है, स्रोत बोध है, स्रोत बोध है, पुस्तकीय बोध है, पुस्तक का स्रोत सुनकर बोध हुआ है, पर आत्म रूप से नहीं है। उसके थोड़ा टाइम लगता है, बोध करने के लिए समय लगता है। कितना समय लगता है, सही उत्तर देना। कितना समय लगता है, हाँ डॉक्टर साहब सही उत्तर दिए, जो मैं सुनना चाह रहा था वही उत्तर दिए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे राम जी, उतना भी समय नहीं लगता है जितना बिल्कुल कोमल से कोमल, बिल्कुल कौला कोमल होता ना, कमल की पंखुड़ी, बिल्कुल तीक्ष्ण से तीक्ष्ण सुई से छेद करने में देर हो सकता है, इसमें इतना भी देर नहीं लगता है। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। सुई के समान हमारे बुद्धि तीक्ष्ण हो, दिशते त्वग्रिया बुद्धिया, ऐसी बुद्धि हो तब जाकर बोध होगा, है ना, वो होना चाहिए। वो तो अपना स्वरूप है। अच्छा, तो जो भ्रांति है, भ्रांति क्यों होती है, तो सामान्य अंश का ज्ञान, विशेष का ज्ञान। जैसे अयमत्वेन उस टेढ़ी मेढ़ी वस्तु का तो बोध है, पर रज्जुत्वेन उसका बोध नहीं है, अयम सर्प की भ्रांति हो गई। जब रोशनी आई तो रज्जुत्वेन रज्जु का बोध हुआ विशेष रूप से, तो भ्रांति हट गई। ऐसे यहां पर आपको सामान्य मतलब सचित आनंद का बोध तो है, पर आत्मत्वे नहीं है, इदमत्वेन है, समझे ना, इदमत्वेन है। समाना ची आत्मा को सचिद आनंद, हाँ, अदम इदम के एक ही अर्थ है, इदम को रूप अयम बनता है, चाहे आप अयम इदमत्वेन बोलो, अयमत्वेन बात है, इदम शब्द का ही अयम बनता है, मूल शब्द है इदम, उसी से अयम इमो सब रूप चलता है ना। हमको ही भूल गया, बहुत दिन हो गया, हजारों बार बोले होंगे, पर अब कहो चलाने को तो सोचना पड़ेगा। इसे लिखा ना, अनभ्यास विषम विद्या, ये विद्या ये बुद्धि का विषय है, तो अभ्यास नहीं होने से विष के समान। पर दोनों में अंतर है, बिल्कुल नहीं पढ़ना और भूल जाना है, बहुत अंतर है। भूलने पर तो जैसे कंप्यूटर में लगाते ना वो केरो का चिन्ह, क्या बोलते उसको, एरो होता है ना, वो सर्च करके ले आता है, ऐसे ही थोड़ा देर सोचने के बाद वो दिमाग में सर्च ढूंढ कर आ जाता है, भूल गए तो, हाँ क्या बोलते, हाँ वो खोज के ला देगा। परंतु यदि बिल्कुल नहीं पढ़ा तो सर्च क्या करेगा, क्या ढूंढेगा, कुछ नहीं। तो दोनों में अंतर है, भूलना अलग है और बिल्कुल नहीं जानना अलग बात है। भूल गए तो याद आ सकता, बोलते ना अरे भाई कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा, करते 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 आ जाएगा। तो देखो, इदमत्वेन तो सच्चित आनंद का अनुभव हो रहा, इदम का अर्थ है दृश्यमान जगत, इदमस्तु सन्निकृष्टे, सामने वाली चीज को इदम बोलते हैं, बिल्कुल सन्निकृष्ट हो, तो सामने की चीज को देखते हैं ना, सामने की चीज को क्या लगता है, इसमें बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, अभी दीपावली आ रही है, घर में रखना चाहिए, रखेंगे पैसा खर्च करके और 10 दिन भाई कबाड़ हटाओ, जगह ये रखा है बेमतलब का। दीपक आप बढ़िया से बढ़िया खरीद कर लाएंगे, लाएंगे ना, जलाएंगे, अच्छी बात है, पर 2 दिन बाद वे दीपक लेगा कबाड़ा हो गया, गंदगी कर रहा है, उसको फेंकना पड़ता है कि नहीं, वैसे रखेंगे। जब लाए थे तो उसमें कचरा बुद्धि नहीं थी, अच्छी बुद्धि थी, अच्छा है, शुभ है, दीपक है, लाओ जलाओ, रोशनी होगा, सब कुछ होगा। और दो दिन बाद लगता हटाओ ये कचड़ा है गंदगी हो गई, हटाना पड़ता है कि नहीं। तो प्रारंभ उसमें सत्व की चित्त की आनंद की बुद्धि हो गई, किसी में दीपक में पदार्थ में जो भी चीज देखते हैं, तो सत चित आनंद हमारी आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का धर्म। परंतु इदम तेन हमने इदम पदार्थों में सच्चित आनंद का आरोप कर लिया, इसी का नाम भ्रांति है। जैसे कि सांप के अभाव वाले रस्सी में सांप के बुद्धि को भ्रांति बोलते हैं, ऐसी सच्चित आनंद के अभाव वाले इदम पदार्थ में, इदम जो भी देख रहे हैं आप नाम रूपात्मक चीज, तो सच्चित आनंद के अभाव वाले नाम रूपात्मक वस्तु में व्यक्ति में ज्यादा भ्रांति व्यक्ति में होती, व्यक्ति में आदमी इंसान में क्या लगता है इससे बड़ा आनंद आएगा, पर धीरे धीरे क्या मालूम पड़ता है सब बेकार लगता है ना, सब धोखा। तो धोखा तो पहले से है, क्योंकि सत्य चित आनंद उस व्यक्ति का वस्तु का पदार्थ का धर्म नहीं है, गुण नहीं, स्वभाव नहीं। व्यक्ति वस्तु का स्वभाव कैसा है तो दुखालय है, वह क्षणिक है, मतलब क्षण प्रध्वंसी है, परिवर्तनशील है। परंतु हमने जैसे रस्सी को सांप समझा ना, ऐसे ईदम में सत्व चित आनंद की भ्रांति हो गई। अब भ्रांति होने से उसको गले लगाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, घर में रखना चाहते हैं, खूब संभालते हैं, और बाद में धीरे धीरे असली रूप आता है तो क्या कहते, अरे सब धोखा हो गया, सब बेकार है, कंटाल गए, बोलते कि नहीं सब कंटाल हो गया, बेकार हो गया। तो पहले शास्त्र बता रहा, यदि आप आत्मत्वेन जिसका धर्म सच्चित आनंद उसको तद्रूप से जान ले तो संसार आपको भी पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, यही भ्रांति वही बता रहे कि कर्तृत्वादीन बुद्धि धर्मान, बुद्धि के धर्म है, स्फूर्तिया के जो आत्म रूप है उसको धारण करता हुआ अनेक प्रकार से प्रतीत हो रहा, वह प्रतीति भ्रांति है, वास्तविक नहीं है। जिस प्रकार से विद्युत के आकार प्रकार स्वरूप को हम अनुभव कर सकते हैं पर इंद्रिय वेद नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं, जो विद्युत है ना ऊर्जा, उसका अनुभव तो होता है कि स्पीकर से आवाज आ रही मतलब बिजली है, लाइट्स रोशनी आ रही मतलब बिजली है, पंखे से हवा आ रही मतलब बिजली है, ऐसा अनुभव तो होगा। परंतु इंद्रिय से पकड़ करके अनुभव करें ऐसा संभव नहीं है। हाँ संभव है, हाँ करंट लग जाएगा, फिर आप क्या कहां पहुंचेंगे मालूम, तूर्यगा में पहुंच जाएंगे, तूर्यगा बिल्कुल बाहर दुनिया के काम के नहीं रहेंगे, हाँ तूर्यगा काम के नहीं रहेंगे, किसी और के काम के तो होंगे पर दुनिया काम के नहीं होंगे। तो वह यह बता रहे कि यह जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है इन धर्मों से प्रतीत हो रहा। तो कोई कहे कि भाई पंखा चलने का नाम विद्युत है, क्या बोलेंगे, भ्रांति बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कोई बोले कि पंखा चल रहा यही बिजली है, कोई बोले स्पीकर बिजली है, इसको भ्रांति बोलेंगे। ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व मंत्रित्व बोधित्व है ना, ये सब भी भ्रांति है, औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। औपाधिक धर्मों को जैसे व्यवहारिक जगत में हम विद्युत का लक्षण नहीं कर सकते, हाँ इतना तो कह सकते जिससे यंत्र चल रहा उसका नाम विद्युत है, जिससे चल रहा वो नहीं, जिससे चल रहा ऐसे जिससे आंख देख रही इससे कान सुन रहा उसका नाम ब्रह्म है, चैतन्य है। पर कर्तापने भोक्तापने को आत्मा मानना ये आपकी भ्रांति है, उस रूप से भाषित हो रहा है, यहां बता रहे कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप से भाषित हो रहा। बुद्ध्यादि उपाधि द्वारा समारोप्यमाणान कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्वादीन स्फुरण लक्षणम आत्मरूपत्वम च दधत पुरतो भाति स्पष्टम प्रतिभासते अतः आभास कल्पित इत्यर्थ। कितना बढ़िया बताया कि बुद्ध्यादि उपाधि के द्वारा, उपाधि का मतलब जानते हैं ना, उपाधि उप मतलब समीपे, आधिकार थे आसमंतात, धीयते मतलब कि निक्षिप्यते इति उपाधि, समीप की वस्तु में किसी चीज का आधान करना, आरोप करने का ना उपाधि है। जैसे मान लो सामने स्फटिक है और उड़हुल का फूल जपा कुसुम लाल लाल फूल है, तो समीप में जपा कुसुम होने के कारण अब जपा कुसुम की लालिमा, लाल फूल की लालिमा, अब लोग जपा कुसुम यदि समझे ना तो लाल फूल बोलना पड़ता है, लोग डिक्शनरी में ढूंढेंगे जपा कुसुम क्या होता है। आप तो भाई विद्वान है, विदुषी है, आपकी बात अलग है। पर सब नहीं समझेंगे ना, तो वक्ता का नियम है यत्र श्रोतु न बुद्धते तत्र वक्तु जाड्यम। भीमा पुरुष कहा था ना, खासकर दशम पीठाचार्य कहा करते थे बार बार कैलाश के, कि यत्र श्रोतु बोधन जागे तत्र वक्तुरेव जाड्यम, वक्ता का ही जाड्य जड़ता है। भाई वक्ता का मतलब उसको ऐसा करे कि सामने वालों को मालूम पड़ जाए। किसी ने बोला कि मघवा क्या है, पूछा मघवा संस्कृत की कहावत है, मघवा क्या है, तो बोल दिया बिडवाजा का नाम मघवा है। बेचारा एक तो मघवा का अर्थ नहीं जानता था, फिर क्या बोल दिया बिडवाजा, बिडवाजा का नाम मघवा है। उत्तर तो सही है, बिल्कुल सही है, और भारी पड़ गया। अब बोले मघवा का इंद्र है तो समझ गया, हाँ इंद्र समझ गया है ना, मघवा मतलब इंद्र, उसी का पर्यायवाची शब्द है बिडवाजा। अब कह दिया हमने बिडवाजा तो और भारी हो गया, अरे भाई ये तो मघवा और भाई बिडवाजा, तो वहां बोलना पड़ेगा मघवा मतलब इंद्र, तुरंत समझ गया बात। तो ये मघवा को बिडवाजा को इंद्र को एक ही चीज है, तो अब लाल फूल से जल्दी समझ में आ जाएगा। जपा कुसुम बोले तो बोले जपा कुसुम क्या होता है, है? अरे ऐसा कैसे आपने बोल दिया, लो क्या बोलेंगे, इतना श्रोता सरस्वती माता को नहीं मालूम। हाँ लाल फूल जो होता है ना वो जो खिलता है, ज्यादा देवी को प्रिय है, देवी को बहुत पसंद है जपा कुसुम, जपा कुसुम। हिंदी में बोलते ओढ़हुल, ओढ़हुल बोलते, ओढ़हुल बोलते हिंदी में, सब जगह होता, यहां भी होता, दिखाऊंगा कमरे में आपको। तो लाल फूल बोलना ठीक है फिर जपा कुसुम की जगह। तो देखो सामने लाल फूल है, स्फटिक है, तो लाल फूल के समीप में स्फटिक है, इसलिए लाल फूल का आरोप स्फटिक में होता है, स्फटिक लाल लाल दिखाई पड़ता है। तो जो स्फटिक में लालिमा है ना वो लाल फूल का है, स्वतः नहीं है, स्वतः उज्ज्वल है, निर्मल है, लालिमा है। अब रख दो पीला फूल तो प्रीतिमा की प्रतीति होगी, हरा से हरितिमा की प्रतीति होगी, ऐसे यहां पर है। जैसी वृत्तियां उसी प्रकार से भाषित होता है। समीप आकर्ता समन्ता मतलब चारों तरफ से, आधीयते मतलब निक्षिप्यते वहां रखते हैं, आरोप होता है, उसका नाम है उपाधि। बुद्ध्यादि उपाधि द्वारा, सब नहीं लिखो, सब लिखोगे तो फिर दोबारा वक्ता लोग क्या सुनाएंगे सब। अच्छा चारों तरफ से मतलब वह जो स्फटिक है ना उसके चारों तरफ लालिमा की भाषित होगा, ऐसा नहीं एक तरफ, चारों तरफ से सभी तरफ से मतलब के रूप भाषित होगा, एक देश में नहीं, एक अंश में नहीं, चारों तरफ से। आकाश है समन्तात, समान रूप से समन्तात, असमन्तात। अच्छा आगे देखो, ये तो सामान्य बात है, ये तो पुरानी बात है, आकार थे असमन्तात सामान्य अर्थ है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना जल्दी आ जाएगा, ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया ना इसलिए जो है ना वो देर लगता है। पहले मैं बहुत ज्यादा सीखता था, सबको पता है, डॉक्टर साहब को, सरस्वती माता को, दो तीन चार साल के बाद धीरे धीरे ब्रेक लगाते 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 अभी ठीक है। चलो मोहर लगा दिया आप लोगों ने, अभी ठीक है। खुशहाल भाई बार बार बोलते थे, हर चार दिन के बाद स्पीकर में बोलते थे वहां खड़ा होके कि स्वामी जी हम बहुत ज्यादा विद्वान नहीं, प्रौढ़ नहीं, हम सन्यासी नहीं, महात्मा नहीं, इस बार बार बोलते थे। महीने में 10 बार बोलते थे कम से कम आपके पापा खुशहाल भाई। तो मुझे थोड़ा बुरा तो लगता था, बस समझ में नहीं आता था भाई अब कितना सरल करे, बोले सरल आओ सीधा और धीमी धीमी करते करते बोलते थे कि हम कोई कैलाश आश्रम के सन्यासी ब्रह्मचारी प्रौढ़ महात्मा विद्यार्थी नहीं, हम कैसे हैं सामान्य, इसलिए बिल्कुल सीधा और धीरे धीरे समझाना चाहिए। 3-4 साल तक मुझे समझते समझते लग गया भाई कितना धीरा किया जाए। जानते क्या गड़बड़ होता था, हम आंख को क्या बोलते, चक्षु बोलते, आंख को चक्षु, अब चक्षु सब समझते नहीं, बाद हमने समझा कि चक्षु नहीं बोलने का, क्या बोलने का आंख। कान को हम क्या बोलते, श्रोत्रेंद्रिय बोलते थे, बाद में भाई इसको कान बोलना चाहिए, कान को कान बोलना, श्रोत्रेंद्रिय नहीं बोलना। जीभ को हम क्या बोलते थे, रसनेन्द्रिय, तो क्या बोलना जीभ, तब समझ में आता है। तो धीरे धीरे करते 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 ऊपर से नीचे जब आदि आता है ना तब समझ में आता है। हाँ गंगोत्री ऐसी चीजें बोला, ठीक है आपने बोला, धीरे धीरे। तो ऊपर से जब गंगा जी आती ना धीरे धीरे, वहां से जोर से बेग से आती है, बेग से आते आते फिर नीचे प्लेन में धीरे हो जाती है। तो कई बार क्या होता है ना कि वक्ता को अपने आप में समझने में समय लगता है, यदि आपको मतलब आदमी को अपनी भूल समझ में आ जाए तो सुधार बहुत जल्दी हो जाती है। वो होता क्या ना, भूल समझ में नहीं आता है कि हमारा भूल क्या है, गलती क्या है, बल्कि उल्टा होता है, आदमी अहंकार से भूल को भूल नहीं अच्छा मानते, तो लोग ऐसे बकते रहते हैं मैं ठीक हूं। जो भूल है ना, भूल को और अहंकार से ढकता है, सजाता है, तो भूल सुधर नहीं पाता। भूल को भूल मान लेना तो बहुत जल्दी हमारे जीवन में चमक आ जाए, चमत्कार आ जाए, सुधार हो जाएगा। भूल को भूल मान ले तो समय लगता है, यह अहंकार ऐसा ना अहंकार टकराता है, तो भूल को भूल जल्दी समझने नहीं देता है। अहंकार बच्चे में नहीं है तो बच्चा बहुत जल्दी बात समझ में आ जाती है, बच्चे को तुरंत मान लेता है ऐसा ही होना चाहिए। तो बुद्धियादि उपाधि द्वारा समारोप्य माळान कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्वादीन कर्तापना भोक्तापना, और प्रमातृत्व का अर्थ है कि जो आप कहते हैं कि मैं जानता हूं, प्रमाता का अर्थ है प्रकृष्टे न मांग माने और ज्ञाने धातु है, तो मैं जानता हूं। देखो प्रमाता का अर्थ अंतःकरणावचिन चेतन, और इसका शाब्दिक अर्थ है कि जानने वाला, प्रमलब प्रकृष्ट अच्छी तरह से। तो आप अंतःकरण की उपाधि से प्रमाता बन गया, बुद्धि उपाधि से बोद्धा बन गया, मन से मन्ता बन गया, स्फुरण लक्षणम आत्मरूपत्वम च, अपना आत्मरूप धारण करता हुआ पूरतो मतलब सामने भाति मतलब स्पष्ट रूप से प्रतिभासते, उसका प्रतिभासन होता है। अतः आभास कल्पित इत्यर्थ, इसलिए उसको आभास बोलते कल्पित बोलते हैं। ये संसार ऐसा है ना कि संसार में यदि आप बुद्धिमान बनेंगे तो भी फंस जाएंगे, है ना। संसार में यदि आपको बढ़िया व्यापार धंधा करना, खूब बढ़िया धंधा करना, मतलब कि अरबपति नहीं खरबपति शंखपति, सबसे अंत में संख्या का क्या बोलता है, एकम द्विपरार्धम च, आगे अंतिम परार्ध है ना, शंख मा शंख पद्म नील और अंत में परार्ध है। यदि आपको शंखपति होना है, परार्धपति होना है ना, इस संसार में रहकर अनंतपति होना है। आपने पढ़ा हुआ कई बार महात्माओं का विशेषण, यहां तो नहीं कह लिखा हुआ है, पहले लिखा करते थे, वैसे कैलाश में खास और भी जगह पुष्कर में जो महात्माओं का विशेषण होता ना, उसमें अनंत श्री विभूषित बोलते ना, अनंत श्री विभूषित, इसके पहले बहुत कुछ लगता है, पद वाक्य प्रमाण पारावारिण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित, और भी लगता है 1008 कितना कितना लगता हो तो अलग हो गया, पर ज्यादा मतलब कि अच्छा है। पद वाक्य प्रमाण पारावारिण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और तीसरा अनंत श्री विभूषित, तो अनंत ऐश्वर्य को पाना है, अनंत ऐश्वर्य से श्री से विभूषित है, जैसे होता ना पद्म श्री विभूषित होता है, ये सब होता ना ऐसे, यहां पर यहां पद्म नहीं, यहां तो अनंत श्री विभूषित, उसका अंत ही नहीं है। तो इसके लिए एक ही उपाय है सबसे बढ़िया, जो बार बार शंकर भाष में बात आती है, कई जगह महाभारत में भी है, अपने आप को अंधवत जड़वत उन्मत्तवत पिशाचवत मूकवत लोकम समाचरेत। ये बात हमको तो बहुत दिन के बाद समझ में, 20-25-30 साल के बाद समझ में आ गई, पर आप लोगों को तो बहुत जल्दी आ गया, आप ज्यादा बुद्धिमान हमसे, 30 वर्ष के बाद समझ में आया। सुबह जो है ना, इस पर अपने आप स्वाभाविक याद आ गया कि बिल्कुल सही बात लिखी है। यदि आपको अनंत श्री को पाना है, अनंत ऐश्वर्य को, तो उसके लिए आपको अंधवत जड़वत मूकवत बधिरवत उन्मत्तवत, उन्मत्त बोलते पागल, उन्मत्त के समान पिशाचवत और जड़वत लोकम समाचरेत, ऐसा ठीक तो लिखा, ये पिशाच होता ना, कभी इधर गया उधर गया कोई ठिकाना नहीं, ऐसे महात्मा तो पिशाची की तरह घूमते हैं ना, कभी यहां कभी वहां कभी यहां कोई निकाहो, कभी हिमाचल कभी मुंबई कभी राजस्थान कभी कहीं, पिशाच का कोई ठिकाना नहीं होता है। आपका ठिकाना है एक घर है, एक ऑफिस है, दो चार अपने सक्रिय संबंधी हैं, तो पिशाचवत लोकम समाचरेत, यदि आप ऐसा लोक का व्यवहार करते हैं लोग कहेंगे बेकार है, तो आपको बहुत समय मिलेगा, और सारे समय से आप परमात्मा का चिंतन, समय की सार्थकता होगी। यदि दुनिया वाले आपको क्या समझे, तो जड़ है ये, तो पागल है ये, उन्मत्त है ये, कोई काम का नहीं, बेकार है, बहरा है, कुछ सुनता है नहीं, हाँ, तो उससे फायदा होगा आपको। फायदा क्या, आप दिन रात भगवान के चिंतन में लगे रहेंगे, स्वरूप चिंतन में समाधि में डूब जाएंगे, और मालूम पड़ गया कि थोड़ा आपको रिद्धि सिद्धि कुछ पढ़े लिखे हैं, लोग पहुंच जाएंगे, महाराज कृपा करो जरा ऐसा है वैसा है। आपने सुना होगा कबीरदास जी की जीवनी, कबीरदास जी ने विचार की दुनिया दिन भर आती सुबह शाम तक और भजन करने देती है, और क्या बोलती है, महाराज कृपा करो खेती जरा ठीक नहीं हुई, कोई आशीर्वाद दो खेती बढ़िया हो जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, बिटिया का ब्याह हो जाए। तो बोले मैं भजन करने चला था, सब विक्षेप करते, तो कहते एक बोतल बया से शराब मंगाए और एक बेस्या को समझाए बुझाए और रिक्शे में पूरे शहर बंबई घूम गए, बनारस की घटना, बनारस पूरे बनारस घूम गए। लोग बोले भ्रष्ट हो गया कबीर, देखो इसको अच्छा महात्मा मानते थे, ज्ञानी बिल्कुल भ्रष्ट। बोला देवी अब तुम जाओ चाहे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आएगा जाएगा नहीं, आराम से राम राम करेंगे। काशी के राजा भी सोचे बिल्कुल भ्रष्ट हो गया कबीर, मैं सोचता था बढ़िया है ज्ञानी, ये तो धोखा हो गया। यदि आप ऐसा करेंगे दुनिया को भगाने के लिए, भीड़ भगाने के लिए, तब तो अच्छी बात है, पर आजकल उल्टा होता, उल्टा जानते ना, और भीड़ को बुलाने के लिए क्या आता है। पहले क्या होता था, ये सच्चाई है, ये कोई ऐसी बात नहीं, पुराने जमाने 50 साल पहले महापुरुष महात्मा लोग भीड़ को भगाने के लिए नाटक करते थे, ड्रामा करते थे, ताकि भीड़ भगे। और अब क्या हो गया, उल्टा, भीड़ को बुलाने के लिए नाटक करना पड़ता है। दोनों मंत्र हुआ कि नहीं हुआ, तो भीड़ आ गई तो दुखी तो होना ही पड़ेगा, तो बताओ दोष किसका, अपना ही दोष हुआ ना। इसलिए कह दिया कि अंधवत जड़वत मुकवत पिशाचवत उन्मत्तवत लोकम समाचरेत। ऐसा व्यवहार करने से आपके जीवन मुक्ति में जरा भी बाधा नहीं आएगी। भाई कोई भी संसारी जीव, शायद ही कोई हो जो आत्म जिज्ञासा लेकर आए, जैसे रहुगण आए थे। रहुगण आए तो वही भरत जी महाराज बिल्कुल उपदेश करने लग गए, और दुनिया वाले आए तो पागल बन जाते, जड़ बन जाते, घर वालों के सामने भी पागल बन गए, जड़ बन गए। यदि आपको अनंत श्री पाना, अनंत ऐश्वर्य, तो ऐसा नाटक करना चाहिए कि आपके सगे संबंधी बंधु बांधव ना क्या समझे, अरे तो ऐसे ही है। और भाई परिवार का तो क्या करे परे, इसको कुछ समझ मगज में नहीं आता, लोग बोलते इसको कुछ मगज में आता ही नहीं। ऐसा नाटक करना चाहिए, इससे फायदा क्या होगा कि आप अपने समय की सार्थकता कर सकते, चिंतन भजन कर सकते, और अधिक आप जरा गुण दिखाएंगे, कारीगरी अपना क्या बोलते हैं, कारीगरी ना, हाँ कारीगरी कला दिखाएंगे, तो दुनिया वाला के पास बैठ करके सारा समय का शोषण कर लेंगे। इसलिए ये बात बदलाई गई। अब चुनाव आपके हाथ में, अनंत ऐश्वर्य पाना है कि सस्ती लोकप्रियता। सस्ती लोकप्रियता जानते हैं ना, थोड़ी सी मान सम्मान वह पाना है, तो अभी आपके हाथ पे। चलो भाई आगे, अस्य भ्रमस्य किम कारणम इति आकांक्षायाम बुद्ध्यादि स्वरूप अपरिज्ञानम इत्याह। अब किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज इस भ्रांति का कारण क्या है, ऐसी आकांक्षा हुई, जगत के भ्रम का कारण क्या है, तब उत्तर दे रहे हैं कि बुद्ध्यादि स्वरूप का अपरिज्ञान। हम बुद्धि को, मन को, अंतःकरण, चित्त को, शरीर को समझ नहीं पाते हैं, इनको आत्मा मान लेते। बुद्ध्यादि है अनात्मा, पर हमने आत्मा मान लिया, इसलिए भ्रांति हो गई। अपरिज्ञान में इत्याह, का बुद्धि कोयमाभासः को वा आत्मात्र जगत कथम इत्यनिर्णयतो मोहः सोयम् संसार इष्यते। का बुद्धि कोयमाभासः को वात्मात्र जगत कथम इत्यनिर्णयतो मोह सोयम् संसार इष्यते। का बुद्धि, ये बुद्धि क्या है, बुद्धि स्त्रीलिंग है, इसलिए का कह दिया, का के का, ये तो क्या बनता, कह कऊ के बनता, कह कऊ के। तो का बुद्धि, बुद्धि क्या है, कोयम आभास, आभास क्या है, चिदाभास क्या है, को वा आत्मा, आत्मा क्या है, अत्र जगत कथम, और ये जगत कहां से आया, अत्र मतलब यहां पर, ये जगत कैसे हुआ, कथम न कैसे। इति अनिर्णय, तो ऐसा निर्णय न होने से मोह, मोह हो गया। सोयम संसार इष्यति, इसी का नाम संसार है। अब यदि आज के युग में आचार्य आते, शंकराचार्य भगवान, तो उनको लिखना पड़ता, ये बुद्धि संसारी विद्यारण स्वामी आते तो ऐसा क्या बोलते कि मोबाइल क्या है, इंटरनेट क्या है, टेलीविजन क्या है, संसार क्या है, शहर क्या, इसमें निर्णय न होने से मोह हो रहा हो रहा कि नहीं। अब विचार करो, छोटा सा यंत्र है तो किसने बनाया, भगवान बनाया कि आदमी बनाया, इंसान ने बनाया। अब बनाने के बाद इतना उलझ गया, दिन रात उसी में उलझा रहता, उलझा रहता। भाई शास्त्र बिल्कुल दो टुक कहता है, कि दुनिया आपको दुख देगी, इसी को बोलते हैं द्वैतम। जहां द्वैत द्वितीय द्वैत भयम भवति, द्वैत से दुख होता, द्वैत से अर्थ, अर्थ बोलते हैं दुख को, द्वैतम तत् आर्तम दुखम। द्वैत को बोलते हिंदी में दुनिया कर लो, जहां भी दुनिया से संबंध जोड़ेंगे वहां स्वाभाविक दुख आना ही आना। और हम क्या सोचते हैं कि इंटरनेट से घर बैठे सबको दोस्त बना लो, मित्र बना लो, अच्छे लोगों को जोड़ लो। अरे भाई, जिसके पास जो होगा वही देगा ना। दुनिया के पास समस्या है, दुख है, तो वही देगा। तो ये परेशान होते हैं, अरे सब बेकार है। ये क्यों हुआ? मोह हो गया। मोह मतलब समझ नहीं पाए। यह तो है सदुपयोग करने के लिए कि आवश्यकता है तो बढ़िया कोई पुस्तक नेट से पढ़ लिया, समाचार सुन लिया, या आहार व्यवहार व्यापार का काम कर लिया, है ना, इसके लिए तो ठीक है। परंतु बिना मतलब का दुनिया से जो है ना, यदि आप संबंध जोड़ेंगे तो दुनिया तो बिना दुख दिए छोड़ेगी नहीं। चूंकि उसके पास दुख है, आप नहीं लेंगे ना तो भी जबरन आपको ऊपर फेंक देगी। आप नेट से बढ़िया चीज देखना चाहते हैं ना, कई बार ऐसी चीज आती है कि मन खट्टा हो जाता है, अरे कहां से, उन लोगों ने डाल रखा कचरा, आता है कि नहीं। इस बात को पहले ही बता दिया महापुरुषों ने कि भाई जहां द्वैत होगा, जहां दुनिया होगी, उससे दुख मिलेगा, और परमात्मा से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो दुनिया के वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण से हम क्या करते हो, संबंध जोड़ते जाते हैं, संबंध कम नहीं करते, जोड़ते हैं। इसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम मोह है। इसीलिए पहले विवेक चूड़ामणि में आचार्य ने कहा कि संगः सर्वात्मना त्याज्य सचेत नो त्यक्तुम शक्यते सद्वि संग विधेयः। सबसे बिल्कुल संग छोड़ दो तो उसी खुशुक सुखी सुख, और नहीं छोड़ सकते, मजबूरी है, तो क्या सदबी संग, अच्छे पुरुषों की संगति करो तो अच्छी बात सुनने को, देखने को, जानने को मिलेगी। तो पहले कहा कि संगः सर्वात्मना त्याज्य सचेत नो त्यक्तुम शक्यते, त्याग नहीं सकते तो सदबी संग विधेयः। इस साधन बताया, शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।